नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्लेटफॉर्म में बैठ सकते हैं आप, जिनको कष्ट है वो बैठो, संकोच मत करो, बी कंफर्टेबल एंड बी अवेक, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उम्मीद है सब आप लोग अभी तक उत्साही रहेंगे। आप में से जो थक गया वो हाथ ऊपर करो। गुड, जय श्री राधे। कुसुम सरोवर धाम की राधा बन बिहारी जी की जय। जय श्री राधे। जहां पर भी बैठे आप वहां पर सतर्क रहिए और अलर्ट रहिए, बस इतना ही है हमारा इच्छा। तो ये गिरिराज गोवर्धन जो है वो मोर के आकार में है, तो उनका जो कान है वो कुसुम सरोवर है। कुसुम का अर्थ होता है फूल, उसको पुष्प सुमन भी कहते हैं, पुष्पवन सुमन वन कुसुम वन। तो ये कुसुम वन है पूरा। इसके अंदर एक अशोक वन है जिसके अंदर अशोक के वृक्ष थे और अभी भी है। नारद मुनि जब यहां पर आए थे तो नारद मुनि एक अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो उनको ध्यान में क्या नजर आया कि जितने भी पेड़ अशोक के हैं और बाकी सारे जितने पेड़ हैं वो सब पेड़ गोपियां बनकर सज धज कर रास में प्रवेश कर रहे हैं। तो बहुत आश्चर्य हो गया उनको कि यहाँ के हर बेली हर पेड़ हर वृक्ष जितने भी पेड़ हैं यहाँ पर सब गोपी स्वरूप। तीन तरह से उनको जानते हैं यहाँ के पेड़ों को। एक ये पेड़ जो है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि उसके सामने जाओगे जो भी इच्छा करोगे वो पूर्ण कर देगा। डिजायर ट्री कहते हैं उसको इंग्लिश में, कल्प वृक्ष, जो भी इच्छा करेंगे वो पूर्ण करेगा। ऐसे कल्प वृक्ष गोलोक वृंदावन में और वैकुंठ में होते हैं। जितने भी पेड़ है सब कल्प वृक्ष होते हैं, तो वही वृंदावन यहाँ प्रकट हो गया। तो यहाँ पर भी जितने पेड़ है वो सब कल्प वृक्ष है, एक पेड़ों का अर्थ हो गया। दूसरा पेड़ ये अर्थ ये है कि ऋषि मुनि जो ऋषि मुनि के रूप में तपस्या करते हैं तो उसको कभी कभी सामना करते हैं कि हमें ब्रज में आकर पेड़ बनाओ और पेड़ के रूप में हम भजन करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पांडवों ने राधा कुंड किनारे में पेड़ बनकर भजन किया, सब लीला समाप्त हो गया, महाभारत समाप्त हो गया। उसके बाद पांच पांडव यहाँ पर आकर वृक्ष बने और वृक्ष के योनि में उन्होंने भजन किया। आप पूछेंगे वृक्ष की योनि में क्यों? क्योंकि वृक्ष की योनि में ना बहुत सारे ऐसे लाभ होते हैं जो बाकी योनि में नहीं मिलते हैं, बहुत नुकसान भी होते हैं, लेकिन वृक्ष का ऐसा स्वभाव होता है कि वृक्ष जहां पर होता है वहां का जो चेतना होता है ना वाइब्रेशन वो खींच लेता है उसको, और उस पेड़ के सहारे आप जाएंगे तो वो वाइब्रेशन जो उसने इकट्ठा किया है वो आपको देगा। तो अगर आप नेगेटिव जगह पे जाओगे तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन स्वीकार करेगा, पेट सिकुड़ जाएगा पूरा, ऐसा एकदम लगेगा कि उसको टीबी हो गया है ऐसा लगेगा आपको। यहाँ पर आओगे तो कैसे पेड़ ऐसे यो बिग वंस ना फुल्ली ब्लॉसमिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सकारात्मक चेतना है, बहुत आनंदमय चेतना है। और वृक्ष का और एक स्वभाव होता है, वृक्ष को ना जो आपको नहीं दिखाई पड़ता है वृक्ष को दिखाई पड़ता है। तो हम लोग कभी घूम रहे हैं यहाँ पर, हमको कहा राधा कृष्ण दिख रहे हैं हमको, लेकिन वृक्षों को नित्य रूप में यहाँ पर नित्य लीलाओं का दर्शन होते रहता है। और ये धाम जो है वो नित्य लीला का धाम है। एक लीला होती है भगवान आते हैं और अपना कुछ समय 125 साल का बिताते हैं और जाते हैं, उसमें कुछ सेकंड होता है, बचपन की लीला, युवा अवस्था, फिर गौचारायण के लिए, फिर शिवराज लीला, फिर वहां से मथुरा, फिर हस्तिनापुर, फिर द्वारका, एक सिक्वेंस है उसका पूरा। काल के प्रभाव, काल के अंदर समाया हुआ है, और एक है नित्य लीला। तो भगवान आए या ना आए, अवतार ले या ना ले, भगवान यहाँ नित्य लीला करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुसुम सरोवर पे यहाँ की लीला रोज होती है, एवरी डे, और वो जो नित्य लीला है उसका दर्शन वो वृक्ष करते रहते हैं, और उन लीलाओं का जो सार है वो ग्रहण करते हैं, एसेंशियल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन उस लीला को वो ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है कि जब आप कथा करोगे तो जितना हो सके उतना पेड़ के नीचे बैठकर कथा करना, क्योंकि वो पेड़ उस धाम में है, उसके आसपास वो लीला जो होती है वो उसको ग्रहण करते हैं, और वो वहां बैठने वाले कथाकार को प्रेरणा देते हैं, अपनी शक्ति से उसको आवेशित कर देते हैं, एम्पावर द स्पीकर। और ये सच है। एक नासिक की यात्रा में गुरु जी ने मुझे पूछा था कि आप कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ कथा करोगे, मैंने बताया उनको, तो सारी मेरी कथाएं एक कमरे के अंदर थी, मतलब हॉल के अंदर, होटल के अंदर। मैंने कहा सब प्लान कैंसिल करो, तो होटल में रहना है आपको, कुछ नहीं करना है, तो जहां जहां जाओगे वहां पेड़ देखो, उस पेड़ के सहारे बैठो और वहां कथा करो। कल भी हमने वहां पर गरुड़ गोविंद में पेड़ के सहारे कथा किया है ना, तो ये पेड़ की विशेषता है। तो दूसरा मैंने बताया कि पेड़ ऋषि मुनि है, संत है, जो पेड़ के रूप में आकर फिर लीला करते हैं, अपना सॉरी लीला का अवलोकन करते हैं, भजन करते हैं। और तीसरा, यहाँ के पेड़ सब राधा रानी का स्वरूप है, लता पता सब राधा रानी है स्वयं, तो हर तरफ से यहाँ के पेड़ जो है वो पवित्र है। तो वैसे नारद मुनि ने देखा अपने ध्यान में कि सारे वृक्ष जो है वो रात में गोपी रूप में होकर श्रृंगार करके रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत प्रभावी हो गए, वो प्रभावित हो गए। तो ऐसा ये बहुत दिव्य धाम है, कुसुम वन इसका नाम है, जिसके अंदर कुसुम सरोवर है। तो यहाँ पर राधा रानी और सखियां ना फूल बिनने के लिए आती थी। वो फूल की विनती है क्योंकि वो कृष्ण को फूलों से श्रृंगार करना चाहती हैं, उनका सेवा करना चाहती है, उनको अर्पण करना चाहती है चरणों में। फूल के माध्यम से हम ना अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फूल एक बहुत सुंदर वस्तु है जो भगवान ने बनाई है, हर तरह के रंग होते हैं उसके अंदर, हर फूल का नया सुगंध होता है, हर फूल का अपना एक दर्शन है खुद का, है ना, दिखने में भी उसका एक है ना विशेषता। कमल देखेंगे तो उसका आपको अलग आनंद है, बजरा का कम करो उसको जरा। तो अलग अलग रंग होते हैं, गुलाबी होता है, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, और अलग अलग सुगंध है उसका, फिर कॉम्बिनेशन होता है। अलग अलग मंदिर जाइए ना तो कैसे माला बनाते हैं उनकी, रंगी बिरंगी माला लाइन से सिक्वेंस में पैटर्न में बनाते हैं उसको, उसके अंदर बहुत चिंतन है। मंदिर में हमारे ना एक 35-30 माला माताजियों का ग्रुप है, भक्ति विधान में भी ऐसे 35-40 माताजियों का ग्रुप है, वो फ्री में सेवा करते हैं, कोई उनका कुछ चार्ज नहीं है, रोज आते हैं, अपने समय पर आते हैं, और बहुत ही एकाग्र होकर बिना बात किए हुए फूलों की मालाएं बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और उसमें एक माताजी बताती है ऐसे बनाओ, ऐसे सीक्वेंस बनाओ, और कथा चलती रहती है, वो उनकी माला बनाते रहते हैं, और बहुत ही गहरा चिंतन है, और बहुत सुंदर चिंतन है। तो सखियां यहाँ पर राधा रानी, ललिता, विशाखा, इनके निर्देश में फूल बिनते हैं और वो उनकी मालाएं बनाते हैं और श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, अपनी भावनाओं को मालाओं के माध्यम से उनको अर्पण करते हैं। और एक यहाँ पर उत्सव होता है सांझी लीला, कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में, नहीं सुना है कोई बात नहीं। सांझी देवी भी है और सांझी देवी का उत्सव होता है पितृपक्ष में, जब हम लोग श्राद्ध करते रहते हैं ना गणेश चतुर्थी के बाद में, अनंत चतुर्दशी के बाद में पूर्णिमा आती है, वो पूर्णिमा के बाद में जो पक्ष शुरू होता है ना कृष्ण पक्ष, उसको पितृपक्ष कहते हैं, वो पूर्णिमा से अमावस्या तक चलता है। तो उस पक्ष में यहाँ पर सांझी उत्सव होता है और गोबर से दीवार पे या जमीन पे बहुत डिजाइन बनाते हैं, बहुत सुंदर, लाइक रंगोली बट गोबर से बनाते हैं, बहुत सुंदर। कभी दर्शन कीजिए, आपको आनंद आएगा बहुत उसमें। और पहले 10 दिन जो है ना वो गोबर की जो रंगोली होती है उस पर फूलों से श्रृंगार करते हैं, उसमें वन बनाते हैं, राधा कृष्ण के विग्रह बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं, बहुत सुंदर कलाकृति के तो श्रृंगार करते हैं, नाक में, कान में, गले में माला, मुरली बजाते हैं, सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर बनाते पूरा जमीन पर या दीवार पर। और पहले 10 दिन में फूलों से उसका श्रृंगार करते हैं। और खाली मैं वर्णन कर रहा हूँ आपको, कोई इतना समझा नहीं पा रहा हूँ। आप देखिए ना, ऐसे पूरे इलाके में भरा रहता है वो ह्यूज डेकोरेशन, और दोपहर से 1 बजे चालू करते हैं वो, शाम 6 बजे तक उसको पूरा कर देते हैं। फिर वो सांझी जो बनी है, सांझी बोलते हैं उसको, जो बनी सांझी है वो अर्पण करते हैं सांझी देवी को, उसका पूजन करते हैं और फिर लोग दर्शन करते हैं उसका रात को 10 बजे तक। पहले दिन नया बनाते हैं, एवरी डे न्यू ह्यूज सरेज प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं। और आप ना कितना भी फोटो निकालें आपका दिल नहीं भरेगा, इतना सुंदर बनाते हो। और ऐसा भी नहीं कि एक ही जगह बनाते, सारे मंदिरों में अलग अलग सांझी होती है। और एक यहाँ का उत्सव है कि सांझी दर्शन करने के लिए निकलना है 3 बजे आपको, और इससे करते 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 सारे मंदिर में दर्शन करते करते शाम को लौट के आना है। लोग बातें करते रहते हैं, यहाँ की देखी क्या, वहाँ की देखी क्या, यहाँ की देखी क्या, वहाँ की देखी। अरे वहां पर बेस्ट है, वहां जाओ। यहाँ के गोसाई बोलेंगे वहां पर भट्ट जी के मंदिर में जाओ, वहां बेस्ट है, अपने भी देखो वहां पर भी जाओ। और आखिरी 5 दिन एकादशी से अमावस्या तक रंगोली से सांझी को सजाते हैं। यहाँ का रिवाज है, भारत में इतनी विविधता है कि एक प्रांत के लोगों को पता नहीं होता है कि उस प्रांत में क्या हो रहा है उसी समय पर। अभी वो लोहड़ी का उत्सव था ना, संक्रांति का, तो 27 जगह का नाम आया उसका, 27 जगह में क्या नाम से जानते हैं उसको, तो 27 जगह में क्या बोलते हैं, हमारे गांव में क्या बोलते हैं उसको, लोहड़ी को, उसने एक नाम आया साउथ इंडिया में, अलग नाम से जानते उसको, मलेशिया में एक नाम से जानते। तो ये सांझी उत्सव भी ऐसा है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, कुछ लोगों को अलग अलग नाम से पता है। तो ये सांझी उत्सव के लिए जब फूलों की आवश्यकता होती थी तो गोपियां आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, श्री कृष्ण ने कहा अपने सखाओं को, नहीं राधा रानी ने तय किया कि हम फूल बिनने जाएंगे। लेकिन आसपास के वन में गए ना तो सारे फूल बिने हुए मिले, मतलब फूल है ही नहीं, सब फूल किसी ने निकाल दिया ऑलरेडी, somebody has come before you, अब रिमूव एवरीथिंग। तो राधा रानी कहते कि अभी हमको दूर जाना पड़ेगा, अभी गोवर्धन में जाएंगे, कुसुम वन में जाकर वहां पर फूल बिनेंगे। तो ये खबर गोपालों को मालूम पड़ी कि आज सखियां वहां जा रही है, हम उनको जाके वहां तंग करेंगे। तो कृष्ण ने कहा एक काम करो, तुम आगे बढ़ो, हम आ रहे हैं। हम कहते ना एक्स वाई जेड, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे ही कृष्ण ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आ रहे हैं, थोड़ा हमें थोड़ा तकलीफ हो रही है, तो लेट आते हैं। उनको पूरा पता था कि जब वो साथ में जाते नहीं है तो लोग उतना दूर नहीं जाएंगे। जैसे हमको पूरा पता है अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं चलेंगे, अगर हम रिक्शा में बैठ जाएंगे सब रिक्शा में बैठ जाएंगे। इसलिए हम चाहो ना चाहो हमको तो चलना ही पड़ता है। तो सरद कृष्ण को पता था, क्योंकि उस दिन कृष्ण के मन में कुछ दूसरी योजना थी। उनके मन में योजना थी कि श्री कृष्ण, मैं राधा रानी को गोपियों को अकेले मिलना चाहता हूँ, इन लोगों को अलग कर दूंगा, इतने दूर जाएंगे नहीं वो, फिर मैं देर से निकलूंगा और पहुंच जाऊंगा अकेले, तो ये लोग फिर पास में जाके घर पे लौट जाएंगे गौचारण करके। वैसा ही हुआ, जब कृष्ण साथ में नहीं गए एज ए लीडर तो पास में गए और लौट के आए। और तो कृष्ण फिर कुछ देर के बाद में निकले, तब तक ये सखियां यहाँ पर ना एकदम बिजी हो गई थी फूल गिनने में, दूर का वन था। अभी एक बहुत ये समझने वाली बात है, सब लोग सुन रहे हैं ना बात, ये सब चिंतन की बातें हैं, बहुत चिंतन गहराई की बातें हैं। तो ये जो फूल बिनते हैं ना, इनकी एकाग्रता इतनी होती है ना कि आप उनको बोलेंगे ना आपको ना पीला फूल बिनना है, बस आपको बोलेंगे आपको गुलाबी फूल देखना है, आपको लाल फूल बिनना है, तो दुनिया में आपको गुलाबी और लाल फूल के अलावा कुछ देखेगा ही नहीं। नथिंग एल्स एग्जिस्ट टूडे एक्सेप्ट येलो फ्लावर। हमने कहा येलो श्रृंगार किया है, वसंत पंचमी का श्रृंगार है वो, वसंत पंचमी में सब जगह पीले रंग का श्रृंगार होता है, तो सब जगह पीले फूल बिने जाते हैं। तो उस समय गोपियां केवल उसी रंग का फूल बिन रहे हैं जो उनको कहा गया है कि ये फूल आपको बिनना है, दूसरी वाली कौन सा फूल बिन रही है आपको देखना नहीं, आपको अपना फूल बिनना है बस। तो उनके लिए जो होता ना अर्जुन का कसा, वो पक्षी के बाएं आंख की पुतली वही दिखाई पड़ रहा है उसको, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इतने ही का करता है। तो पीले फूल ही गुलाबी फूल पर ही ध्यान है उसका, तो एकदम मग्न होकर वो फूल बिन रही थी अपने अपने बुश में। तो राधा रानी जहाँ बस बैठ कर फूल बिन रहे थे ना जिस बुश में, तो बहुत कांटे थे उसके अंदर, तो सब पल्लू ऐसे अटक गए थे, उनको पता नहीं था कि मैं अटक गई, लेकिन वो अपना फुल दुनिया में बिजी थी। उसने में माली आया संडा लेकर और वो ठाक 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 ऐसे करते करते आ रहा था, मतलब पता चले ना मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे होता ना, वो उगसा जा होता है, वो गुरसा लोग ऐसे होते ना, ऐसे करते रात को जागते रहो करके आते ना, जागते रहो करके, वैसे वो जोर जोर से आवाज करके आ रहा था। तो गोपियां बहुत मग्न थी, उनको समझ में नहीं आया पहले, बाद में कुछ गोपियों को होश आया, अरे माली आ रहा है। तो आप जानते हैं ना, वो पक्षी है ना, वो ऐसे उड़ते हैं और सबको जाके चीं 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 करके बता देते हैं। आपको देखा आपने कभी जंगल में, मुझे कोई शेर वहां से आ रहा है तो दो चार पक्षी उड़ते हैं, सब जाकर ऐसे संदेश दे देते कि आ रहा है आ रहा है, सब लोग उड़ जाते हैं, जानवर ही भाग जाते हैं। तो कुछ गोपियों ने संदेश देना शुरू कर दिया, संकेत देना। तो कुछ गोपियां सतर्क हो गई और वो निकलने लगी, कुछ कुछ फूल गिरे, कुछ ऐसे गिर रहे हैं, उठाया भागने लगी और फिर पुकारने लगा, अरे धनिष्ठा, अरे सत्कार का, अरे सब भागो भागो भागो। तो जिनको जिनको आवाज दिया वो भाग रहे भाग रहे भाग रहे। बाद में राजा रानी, अरे राजा रानी विश्वभानु नंदिनी कहाँ पर हो, चलो चलो चलो। तो वो कुछ देर के बाद में होश में आई, तो बहुत मग्नता से फूल गिन रही थी। तो जब वो माली का डंडे का आवाज ना पास में आ रहा है, अभी जोर से सुनाई पड़ रहा है, पहले दूर सुनाई पड़ रहा था, क्योंकि दूर से आ रहा था, अभी पास में आ रहा है। तो कृष्ण भगवान ना, सब गोपियां भाग गई और राधा रानी ना अपने अपने वो फूल जो पल्लू जहाँ अटका था ना, वो उसको निकालने में, यहाँ जहाँ निकालते तो यहाँ अटकता था, यहाँ निकालते तो यहाँ अटकता था। उस चक्र में गोद में जो फूल है वो सब गिर रहे थे, उसको बचाने जाने तो और अटक रहा है। ऐसे चक्र में वो इतनी फंस गई कि कपाल में पसीना आ गया, श्वेत बिंदु जमा हो गए एंग्जाइटी में। और वो सामने आके खड़ा हो गया, अभी कोई नहीं है, सब गोपियां भागो भागो बोल के उनकी आवाज भी क्षीण हो गई, वो दूर पहुंच गई है। राजे राजे बोल रहे हो, दूर दूर का आवाज आ रही है। अभी केवल माली सामने खड़ा है और घबराई हुई राधा रानी है, सहमी सहमी सी। माली उसे बड़े मूछ वाला, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा खड़ा है, आप लोग किसको पूछ के आए यहाँ पर, क्या तुम्हारा वन है, किसने यहाँ पर प्लांट लगाया है, किसने जल दिया है, किसने यहाँ पर रक्षा की है, किसी ने नहीं की है, तो किसके परमिशन से आप यहाँ पर आए। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे, वो तो डर रही है। ऐसे बोलते बोलते ना, दो कथा है इसकी, मैं आपको पहले कथा बता रहा हूँ। तो बोलते बोलते ना, और सब कंधे पे हाथ रख के खड़ा होता है, बड़ी बड़ी आंखें करके, ऐसे अभी अभी दंड देगा, तो दोनों हंस देता है, ये स्माइल। उसको आश्चर्य होता है, अभी तो डांट रहा था, अभी क्या होने, बेटा उठा के उड़ा देता है, मुंह निकाल देता है। तो कौन है, कृष्ण कन्हैया भगवान श्याम सुंदर जी आए हैं। तो वही मेरे को पता नहीं ना, वो हिंदी में कैसे बताना है, तो मैं हमेशा मराठी में बताता हूँ, क्या है, जीव भंडार पड़ला। अरे बाप रे, मैंने क्या सोचा था अभी क्या होगा, लेकिन अपना कन्हैया निकला। तो पूछा उन्होंने, आज ऐसा क्यों किया आपने, उन्होंने कहा कि आज ना मुझे अकेले में आपको मिलने का विचार था, इसलिए मैंने सबको भगा दिया। तो ठीक है, अभी क्या करना है, तो कहते आप रोज क्या करते हो, ये फूल हम लोग बिनते हैं, फिर आपके लिए माला बनाते हैं, तो ठीक है बना लो, फिर इनको धोने पड़ते ना, फिर तो रोज कहाँ धोते हो, तो जमुना जी में जाकर धोते हैं, जमुना जी बहुत दूर है यहाँ से, चलो जमुना जी जाते हैं धोके आते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, आपके साथ में देखेंगे तो कंप्लेन करेंगे ना, घर पे जाके मुश्किल हो जाएगा, ऐसा पब्लिक में कैसे आपके साथ जाऊंगी मैं वहां तक, लेकिन फूल तो धोने हैं, मैं कैसे धोऊं, अभी आप तो मिल गए, अभी आपको छोड़ के जाना मुश्किल है और फूल धोना भी जरूरी है, क्या करें। तो मालूम है हमारे भगवान कैसे हैं, आपको कोई स्नान करना है क्या, तीर्थ में आपको बद्रीनाथ में स्नान करना है, तो जाने की जरूरत नहीं है, उसको बुला लेते इधर, आपको यही स्नान करवाते हैं। तो कहते जमुना जी को ये बुला लेते हैं, तो ऐसे पैर से कैसा जमीन पर गड्ढा बनाया विद द हील, हाँ जोर से, और थोड़ा खड्डा बड़ा किया और जमुना जी को बुलाया, जमुना जी को आह्वान कर, जमुना जी आ गई। जमुना जी तो तत्पर रहती है, कभी जहां बुला वहां हाजिर है। यहाँ पर ये विशाल कुंड जो बना है ना, ये जमुना जी का जल है और ये कुसुम सरोवर का निर्माण हुआ उस सुंदर लीला के माध्यम से। और जब निर्माण हुआ कुसुम सरोवर का, तो सुंदर किनारे पे दोनों बैठे, उन्होंने फूल धोए। और अभी राधा रानी कह रही थी कि बनाई रहो, तो उसमें कहते हैं कि मेरी ऐसी इच्छा है, आपकी ऐसी मेरी एप्लीकेशन है आपके लिए, कि मैं आपके बालों का श्रृंगार करना चाहता हूँ इन फूलों के द्वारा, आप रोज करते हमारे लिए, तो हम करना चाहते हैं। तो ठीक है, कह रही कर सकते हो। तो फिर वो सामने बैठ जाती है, आप लोग माताएं है ना, आपको कन्या भी है ना घर पे, कैसे बैठते हैं बाल बनाने के लिए, वो आगे बैठते हैं, फिर आप उनके बाल बनाते हैं ना ऐसे, फिर कंघी रखते, कभी फिर वेणी बनाते, फिर वापस कंघी करते, फिर वेणी बनाते, फिर उसमें फूल लगाते हैं, गजरा लगाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हैं सर, ये क्या है, नीट लाओ ना, ऐसा करते हैं ना लड़की लोग, बहुत देते हैं इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं और बैठे रहते हैं, मम्मी फिर वो फॉलो करते रहते हैं। जैसे राधा रानी आगे बैठ गई और कृष्ण उनके बालों को हाथ में लेकर सवारने लगे और श्रृंगार करने लगे, और राधा रानी भी आईना देखकर देख रही है, लेकिन वो आईने में खुद को नहीं देख रही है जैसे हमारी लड़कियां देखती हैं, वो आईने में कृष्ण को देख रही है, क्योंकि वो अभी कृष्ण की तरफ उनकी पीठ हो गई ना, तो कृष्ण का दर्शन होना बंद हो गया, वो रह नहीं सकती उनके बिना, दर्शन दिए बिना। तो अभी दर्शन अगर बालों को संवारना है, उनको सेवा करने देना है, तो फिर दर्शन में होगा, तो दर्शन में होना चाहिए, इसलिए आईना आईना लेकर उसमें कृष्ण को देख रहे हैं, श्रृंगार करते हुए हमारा कृष्ण को देख रहे हैं, ये भाव है यहाँ का। हमें भी वो भाव कैप्चर करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, श्री कृष्ण का ध्यान हमेशा बने रहना चाहिए, ऑलवेज व्हाटएवर हैपेंस, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन लाइफ, ऑलवेज बी गॉड कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस, ऑलवेज उनको दिल में बसाए रखो, उन्हें दिल में बंद कर दो, कुसुम सरोवर में फेंक दो चावी। ऐसे रखना चाहिए दिल में बंद करके भगवान को। तो ये एक लीला हुई है ना, यहाँ पर कैसा है ना, एक ही लीला भगवान विविध प्रकार से करते हैं रोज, नित्य नवायमान, रिपीटेशन नहीं है, समानता है लेकिन वही नहीं है, सेम डिफरेंट है। तो सांझी लीला का मौसम था, तो उसमें क्या हो गया अगली लीला में कि दो चार गोपियां रह गई और कृष्ण आए और गोपियां सब भाग गई थी, तभी कृष्ण आए माली के रूप में, रूप रूप चेंज करके दिखाया नहीं, माली के रूप में आए, परेशान राजा रानी को देखा, उनको छुड़ाया, वो जाल सुनो कांटों में से वगैरह छुड़ा दिया और वो सब फूल वूल दिए और निकल गया। लेकिन जब छुड़ा रहा था तो ऐसा जाल डाला उसके ऊपर, राजा रानी ना एकदम भाव विभोर हो गई उनके दर्शन से और उनके मदद से, और उनके क्या क्या कहें आपको, जो लीला चल रही थी उसमें इतने भाव विभोर हो गई कि वो तो छुड़ा कर चला गया, और उतने में गोपियां भाग भाग के आई, क्या हुआ क्या हुआ, तो उन्होंने बताया एक कोई आया था नीला सा माली, उसने इतने प्रेम से मुझे छुड़ाया। अच्छा चलो चलो चलते हैं, अभी देर हो रही ना, नहीं नहीं अभी जाने का दिल नहीं कर रहा है, उसे मिलने का दिल कर रहा है जिसने मेरे कांटों छुड़ाए, कांटों को छुड़ाया, चलो उसको ढूंढते हैं। सब गोपियां ढूंढने गई उनको, एक जगह मिला हो अभी वो होशियार है, तो जाके मिला तो बात करने लगे, अभी कैसे ना वो प्रेम से उसने छुड़ाया, लेकिन जब मिले चार गोपियां मिलकर तो वो भी थोड़ा नखट है ना, ललिता देवी बहुत तेज है हमारी, कहते कौन हो तुम, माली आके, आप कौन हो, कैसे फूल बनने आए आप, तुम्हारे पिताजी ने यहाँ पर झाड़ लगाया था क्या, ऐसे वाक्य है उसके अंदर, किम पितृ थी तुम, हाँ सबसे बड़ा वर्षा नहीं आता लेकिन फिर बोल रहा हूँ। उसका अर्थ यह है कि क्या तुम्हारे पिताजी के मालिक का गार्डन है क्या ये, तुम कैसे आए यहाँ पर, किसको पूछ के आए, तो तुम यहाँ के कौन मालिक हो, तो मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं दफारी करता हूँ, जल देता हूँ उसको, मेरे परमिशन के बिना कैसे आप आते हो, ऐसे नोक झोंक चालू हो गई। अभी राजा रानी भाव में देख रही है उसको, ये लड़कियां झगड़ा कर रही है उसके साथ में, तो फिर अभी कैसे है ना, पूरा ऐसा कंबल ओढ़ के रखा है, सब ऐसा रखा है, अभी ऐसे करके रखा है, तो जब झगड़ा होगा ना तो कुछ कुछ बातें खुल जाती हैं, है ना, तो झगड़े में भाव ध्यान थोड़ी लगते हैं कि हमने ये कवर करके रखा है, तो वो जो कंबल है ना वो ऐसे ऐसे हिलने लगता है, तो इधर ना बांसुरी दिखाई पड़ती है छुपाई हुई ललिता को, जाके तुरंत उसको खींच लेती है, और दो गोपियां तुरंत को कंबल ओढ़ लेती है उसका, अरे दो गोपियां तुरंत फेटा निकाल लेती है, हाँ देखो पकड़ा ना तुमको, बहुत शैतानी करते हो यहाँ पर माली बनकर आते हो, तो कहते हैं कि हाँ आपको कुछ लोगों को मिलने का दिल था अकेले में, कहते नहीं देर हो रही है, तुमने इतना टाइम पास किया यहाँ पर, हमारी शादी देवी का पूजा करनी है, सजाना है, कौन सजाएगा उसको, तो वो कहते नहीं नहीं आप रुको, मुझे राधा रानी का थोड़ा श्रृंगार करने की इच्छा है। सखियां भी बैठ गई उन्होंने पूरा श्रृंगार किया उनका, और बाकी सब सखियां चली गई क्योंकि उनको शादी करना था तो वो चली गई। ये लोग राजा रानी को ढूंढते ढूंढते आए, रुके, बहुत देर श्रृंगार किया, सुंदर वही आई ना। उसके बाद में उन्होंने कहा बहुत ढेर हो चुका, अभी तो आज बहुत ढेर हो चुका, अभी तो माँ भी डांटेगी, कहाँ गई थी, तो शांति देवी का पूजा करने का समय भी बीत गया। तो कहते आप चले जाओ, आपकी सांझी आज बन जाएगी, आप चिंता मत करना। और सब लोग चले गए और ना कृष्ण हवा की गति से उनके पहले उनके उनके घर पे चले गए, सखी बनकर घूंघट ओढ़ कर, और कह रहे हैं ललिता के घर में जाकर, ललिता ने मुझे भेजा है। विशाखा के घर में जाके बोल रहे हैं विशाखा ने भेजा है। उसके घर में जाके बोल रहे हैं धनिष्ठा ने भेजा है। ऐसा करके सब लोग बुढ़ा, कृष्ण स्वयं है ना, वो सुंदर सांवली गोपी घूंघट ओढ़ के ऐसे नई नई दुल्हन ब्याही हुई, उसने कहां से आई तुम, बोले मैं नंदगांव में नई नई ब्याही हुई नंदगांव की हूँ मैं, नंदगांव में मेरा ब्याह हुआ है, तो मैं अभी राजा रानी को मिलने आई थी। तो ऐसे सबका नाम बोलकर सबके घर में सांझी बनाई और उसके बाद में ये लोग पहुंचे। तो कहने की जरूरत नहीं कि उस दिन उन चार पांच लोगों की सांझी सबसे बेस्ट थी। तो कृष्ण ने अपने हाथ से उनकी सजाई थी उसको, सांझी देवी को, ऐसे अद्भुत लीलाएं। तो ये वन है, वो ये कुसुम सरोवर है, यहाँ पर रोज जब हम शुद्ध हो जाएंगे ना, प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, ये संतों का हृदय शुद्ध होता है ना, उस संतों का हृदय शुद्ध होता है तो वो शुद्ध हृदय के आंगन में वो कृष्ण का श्याम सुंदर का सदैव दर्शन करते रहते। जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा तो तब हम यहाँ आएंगे तो हमको हर दिन हर समय किनारे पे बैठे हुए राधा और श्याम सुंदर मिलेंगे। राधा रानी आगे आईना लेकर, कृष्ण पीछे उनका बालों को सवार रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, उनको फूलों को लगा रहे हैं, सब बालों को सजा रहे हैं। फिर कृष्ण राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं, वो कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। ये सुंदर लीला है, प्रेम की लीला है, फूलों के माध्यम से अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। कभी वो उनकी सेवा कर रही है, कभी कृष्ण उनका श्रृंगार कर रहे हैं। ये कुसुम सरोवर का भाव है। और ये कुसुम सरोवर जो आप देख रहे हैं ना, ये इसमें अदृश्य एक ब्रिज है, सेतु है बीच में, उसके चार तरफ से वो सेतु अंदर जाता है और बीच में एक जगह मिलता है, वो बीच में एक अदृश्य कमल है अनंत पंखुड़ियों का। उस पंखुड़ी वाले अनंत पंखुड़ी वाले कमल के बीच में रत्न सिंहासन है और उस रत्न सिंहासन में राधा और श्याम सुंदर श्रृंगार किए हुए विराजमान है। सब सखियां जो हैं वो आठ पंखुड़ियां जो मेन है ना अष्ट पंखुड़ी उसमें वो खड़े हैं और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अष्ट दले प्रधान नायिका बोलेंगे वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदिनी रे राजा हम सकेली कोरे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्य हेमा पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। मतलब ये वृंदावन में जितने जलाशय हैं उसके अंदर सुंदर एक कनक कमल सुसुवर्ण कमल है, उसमें राधा कृष्ण विराजमान है, अष्ट पंखुड़ियों पर सब पतियां विराजमान है, सब सेवा कर रही है उनकी। तार मध्य रत्नासने बोसियाचे दुई जने दो जन बैठे हैं, श्यामा संगे सुंदर राधिका सुंदरी राधिका। इतना सुंदर दर्शन है। नरोत्तम दास जी का आज और कल पूर्णिमा के दिन आविर्भाव दिवस है, नरोत्तम दास ठाकुर का, उनके द्वारा लिखा गया भजन है ये। वो कह रहे हैं कि वो सब सखियां उनकी सेवा कर रही है, सुंदर कमल के बीच में रह रही है, सब लोग कोई वाद्य बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई फूल आरोग कोई भोजन करा रहा है उनको, और युगल जोड़ी श्याम सुंदर जी जो है वो हंस रहे हैं, हास परियास हास्य पौरी हास्य संभाषण, हास परियास का सुंदर क्या है सॉफ्ट, क्या कहते हैं उसको, यदि मृदु कोमल संवाद चल रहा है उनका, प्रेम का एकदम सुंदर भाव से। और क्या कहते हैं कि ये सुंदर संभाषण चल रहा है, सब सखियां उसको प्रोत्साहन दे रही हैं, आनंद दे रही है, भगवान को चामर डुला रहा है। तो नरोत्तम दास जी कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इसको, मैं इस लीला को देख रहा हूँ और ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ, सदाई सुर का मोरा माने, गुण लावण ए रूप लावण्य राशि, आमिया पोड़ीचे खासी, हास्य परी हास्य संभाषण, नरोत्तम दास को नित्य लीला सुखमोय, सधाई स्पुर का मोरा माने। ये सुंदर लीला जो चल रही है वो तो सदा मेरे हृदय में स्फुरित होती रही, उसका दर्शन मेरे हृदय में हमेशा प्रकट होता है। ऐसे हमको भी कामना करनी चाहिए। हम भी यहाँ पर आते हैं पूरी अभिलाषा लेकर, लेकिन हमको नजर नहीं आता है, लेकिन संत लोग जो देख रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं और हमको सुना रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे होता है यहाँ पर। अभी दिन आएगा तो हमको भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन पहले जानकारी तो कर लो क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा सुंदर यहाँ पर लीला है, बहुत सुंदर। ये कुसुम सरोवर ना बहुत अद्भुत स्थान है। क्षत्रिय दिख रहे ना आपको, ये राजस्थान के जो राजपूत राजा है ना, उन्होंने इसको हवा महल कहते हैं। हवा महल मतलब क्या, गर्मी में आकर बैठना है, चारों तरफ से फिर वो हवा बहती है उसके अंदर से। तो गर्मी के अंदर रानियां इधर बैठती हैं, उधर बीच में राजा बैठते हैं, उनको हवा देते हैं, जलाशय है, उसमें कोई नौका विहार कर रहे हैं, कुछ ऐसे आनंद की स्थान है। तो वैसे ही कृष्ण राधा रानी यहाँ पर आनंद लेते हैं। तो एक बार नारद मुनि को भगवान राधा रानी के आठ सखियों के साथ दर्शन करने की तमन्ना थी। राधा रानी का जन्म हुआ रावल गांव में, वहां पर राधा रानी ने दर्शन दिया नारद मुनि को, छोटी थी लेकिन 16 साल की उम्र की वो दर्शन दिया, 1600 वर्षीय पूर्ण स्वरूप का। तो बार बार दर्शन करके, राधा रानी का दर्शन करके नारद मुनि ना बेहोश हो गए, बार बार बेहोश, बार बार होश, बार बार बेहोश, इतना आनंद का अनुभव किया उन्होंने। पूरा गणित बनाकर आए थे वो कि कहाँ पर जन्म हो गया होगा, बराबर विश्वानु महाराज के घर में पहुंचे गोकुल में रावल में, पहले बना किया उन्होंने, एक बार में दिखाया दर्शन, तो सबको दूर करके अकेले दर्शन किया। तो उन्होंने 16 साल के किशोरी का दर्शन दिया। तो उन्होंने दर्शन करने के बाद जब होश में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी आपका अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है। तो राजा रानी ने कहा आप कुसुम सरोवर चले जाओ। तो नारद मुनि वहां से गोकुल से, यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर दूर है वो, वहां से ना ऐसे भाव विभोर होकर कभी लोटपोट हो रहे हैं, कभी रोलिंग इन द डस्ट, कभी डांस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और हवा से गति से ऐसे ऐसे हवा में ही आ गए वो, मतलब यू डिड नॉट हाउ यू रीच हियर, पॉइंट इज दैट, ऐसा आनंद में आए दर्शन करके कि अगला दर्शन मिलेगा अभी। तो कुसुम सरोवर किनारे आए तो यहाँ पर उनको ना माधवी गोपी और वृंदा गोपी दोनों मिले, और दोनों गोपियों ने उनका स्वागत किया नारद मुनि का, और नारद मुनि को ना एक कोने में, दक्षिण कोने में उनको स्नान कराया। सब चमत्कार होता है यहाँ पर, हम लोग भी तो स्नान करते हैं, कुछ नहीं होता है। उन्होंने स्नान कराया तो नारद मुनि गोपी बने, नारदीय गोपी बने वो। फिर वो दो गोपियों ने उनका प्रेम से श्रृंगार किया। देखो कैसा होता ना, इतनी प्रगत, इतनी क्या कहते हैं उसको, उत्कट सखियां राजा रानी की, जब किसी पर प्रेम करते हैं ना, वर्षा पर कृपा का करती है ना, तो गोपी शरीर प्राप्त हो जाता है। तो अपने हाथ से उनको श्रृंगार किया उन्होंने गोपी का, और ऐसे हाथ पकड़ के ना वो अदृश्य ब्रिज में से उनको चला चला कर वो रत्न सिंहासन के पास ले गई उनको, और उनके हाथ में चामर दिया, बोले करो सेवा। तो नारदीय गोपी अभी चामर सेवा कर रही है, चामर डुलाबो कबे, नहीं क्या कहते हैं उसको, चमर डुलाबो कबे हेरिबो मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवाने मराणे गति हर नाही मोर। राधा कृष्ण मेरे जीवन प्राण है, मेरे जीवन में उनके बिना और कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मैं चामर लेकर उनकी सेवा करूंगा। गांठी या माला तिर माला दिबो दो हार गले, मैं मालतियों की माला बनाऊंगा और दोनों के गले में पहनाऊंगा। अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबुले, उनके होठों के लिए मैं तांबुल बनाकर दूंगा, उनको लाल रंग प्रदान करूंगा। गांठिया माला तीर माला दिबो दोहार गले, अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबुले। ऐसे सेवा यहां पर होती है। तुमने चामर का सेवा किया, फिर राधा रानी ने नारद मुनि को आदेश दिया कि आप अभी रही रहो, नहीं रहो और हमारे दोनों के विग्रहों की पूजा कैसे करते हैं उसका ग्रंथ लिखो, मतलब पंचरात्रि का विधि उसका ग्रंथ लिखो। तो नारद मुनि कहते हैं अरे मुझे शाप है दक्ष राजा का कि मैं 3 दिन के ऊपर कहीं जगह रह नहीं सकता हूँ। उनका कहना ऐसा है, मेरा नहीं कहना ऐसा है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन उनका कहना ऐसा है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहां झगड़ा बना देता हूँ, झगड़ा बना देता हूँ। कर लावा नारद, ऐसे हमारे बचपन में बोलते थे मराठी में, कर लावा नारद मतलब कर मतलब झगड़ा बनाना। तो वो दक्ष राजा बहुत दुखी थे, शाप दिया आप है ना एक जगह की 3 दिन के ऊपर मत रहना, आपको शाप है ताकि 3 दिन के ऊपर हो गया तो वो झगड़ा पैदा पड़ेगा ना उसको पहले आउट। तो उन्होंने बताया राधा रानी को, राधा रानी कहती है वो शाप मटेरियल वर्ल्ड में लागू है जहां दक्ष राजा का कंट्रोल है, जहां जन्म मृत्यु का प्रभाव होता है वहीं पर उनका अधिकार है, वहां तक ही शाप दे सकते हैं। ये मेरा घर है, दक्ष राजा का शाप यहाँ लागू नहीं है, दिस इज माई हाउस, ये मेरा निज धाम है, यहाँ पर जितना मर्जी रहो दक्ष राजा का शाप यहाँ पर लागू नहीं होता है। नारद मुनि वेरी हैप्पी, वापस आए उनको लेकर आए कोने में, दोबारा स्नान करवाया, फिर पुरुष शरीर प्राप्त हो गया, फिर उन्हें विदा किया प्रेम से उनको। नारद मुनि यहीं से आगे चले गए, ऐसे अभी वो स्थान भी इधर ही है, 1 किलोमीटर दूर है। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि यहाँ पर रुके, नारद कुंड है उधर उसके किनारे रहे और राधा रमन कृष्ण का ध्यान करते हुए राधा रानी का ग्रंथ लिखा, नारद पंचरात्रि का सूत्र, इसी के आधार पर हम लोग अभी भगवान की पूजा करते हैं, पूरा डिटेल में लिखा है सूत्रों के आधार। नारद मुनि को यही कृपा हुई, यहाँ पर निवास प्राप्त हुआ। अष्टावक्र मुनि ने यहाँ पर तपस्या किया, वही अष्टावक्र मुनि जिनके शरीर में 8 जगह पर बांस था, कैफोसिस 8 जगह पर उनके बैंड था शरीर में, वैसे ऑक्टोपस की तरह चलते थे ऑक्टोपस अष्टावक्र। तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया है और कुछ ठाकुर ने दर्शन दिया यहाँ पर, यहीं से वो भगवत धाम चले गए, उनकी समाधि भी बीच में है उसके। और यहाँ पर उद्धव जी आए हैं, आपको बताया मैंने कहानी उद्धव जी का है ना, तो ग्रुप अलग अलग होते हैं ना तो मुझे याद नहीं रहता है किसको बताया। एनीवे उद्धव जी भगवान के बहुत ही निकट के भक्त हैं, मतलब आप और हम क्या करना चाहते हैं, भगवान के साथ बैठना चाहते हैं, भगवान के साथ में वार्तालाप करना चाहते हैं, भगवान के निकट में रहना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं, उनके साथ में खेलना चाहते हैं, जो भी आप कहो जो आप सोच सकते हो कल्पना में, वो सारी कल्पनाएं उनके जीवन में सत्य थी, इतने निकट थे भगवान के वो, सो क्लोज। ऊपर से चचेरे भाई भी थे, ऊपर से शरीर भी भगवान के रंग का था, ऊपर से चेहरा भी उनसे मिलता जुलता था, ऊपर से मंत्री भी थे, क्या नहीं थे, मतलब फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू वाज क्लोजेस्ट टू कृष्णा। दरबार में भी मंत्रणा करने के लिए, घर में भी, कहीं भी जाओ खाने पीना शिकार खेलना जब साथ में। वो उद्धव जी को एक प्रकार से हम तो नहीं कह सकते घमंड हो गया था, लेकिन भगवान को लगा कि ये तो चरम सीमा है ना मेरे पास में रहने की, इसके आगे कुछ है नहीं, पर उनको बताना था कि इसके आगे भी बहुत कुछ है। आपको लगता होगा कि ये लास्ट स्टॉप है, लेकिन लास्ट स्टॉप नहीं है, इसके आगे भी बहुत स्टेशन है। तो अपने वो बृहस्पति के शिष्य भी थे ऊपर से, आओ भूलना भूल गया बताने के लिए, क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ ना आपका, तो डिसाइपल ऑफ बृहस्पति, द हाइएस्ट नॉलेज उनको प्राप्त हुआ था, हर तरह से विद्वान और साक्षात्कारी जीव थे वो। तो उन्होंने उनको ही चुना गोपियों को संदेश देने के लिए, माता पिता को संदेश देने के लिए लेटर लिखा, बोला जाओ लेके आओ। तो जब वो ब्रज में आए तो वो सोच रहे थे कि गोपियां इतनी दुखी है, इतने विरह में है, इतनी परेशान है, भगवान के विरह में दुख भोग रही है, मैं उनको जाकर ना योग सिखाऊंगा, उनको ब्रह्म ज्ञान दूंगा, ब्रह्म ज्ञान के आधार पर उनका दुख निवारण करूंगा, उनको समतल बनाऊंगा, सम दृष्टि का बनाऊंगा, मतलब ना दुखी ना सुखी, आई विल मेक देम इक्विपोइज्ड। ऐसा बड़ा योजना बनाकर अपना, वो डॉक्टर होते ना अपने, आप डायग्नोस करते ना फिर अपने वो बनाते हैं प्रिस्क्रिप्शन, जब विजिट पे जा रहे हैं तो सोचते हैं कि अभी मैं सुन चुका हूँ सिम्टम क्या है, एक दो तीन चार पांच दवाई देकर आऊंगा, बैग में रेडी है आपकी, तो ये प्लानिंग कि मैं क्या ट्रीटमेंट देने वाला हूँ। लेकिन जब यहाँ पर आया ना उद्धव जी आए तो संध्या का समय था, सब लोग दूध निकाल रहे तो दूध की आवाज आ रही थी, इतनी सुंदर सिंफनी थी वो, तो देखकर एकदम हैरान हो गया वो, मतलब सो हैप्पी, इतना उनको आनंद आया वो ध्वनि सुनकर, संध्या के समय सबका दूध निकाला जा रहा है। और क्या देखा, जमुना किनारे सब गोपियां बैठकर ना, कुछ गोपियां जवान गोपियां जो विरह में थी सब बैठकर ध्यान करती, उनको लगा अच्छा है थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लिया योगा में तो आगे का सिखाना आसान हो जाएगा, एबीसीडी कम से कम आ रहे हैं, ऐसा उनको लगा। तो फिर वो गए उनके पास पूछने के लिए कि क्या क्या आता है, तो क्या ध्यान कर रहे हो आप, फिर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान के लिए करते ना, ध्यान में भगवान को पकड़ने के लिए, हाँ योगी भी ध्यान अगम्यम, वो अगम्य भगवान को पकड़ने के लिए योग करते हैं और उसमें हृदय में उनको बसाने का प्रयास करते हैं, योग करके मन को नियंत्रित करके भगवान को बसा लेते हृदय में। तो ये कह रहे हम किसी का ध्यान नहीं कर रहे, फिर क्या कर रहे हैं, बोलते जो बस गया है ना हृदय में उसको निकालने के लिए योग कर रहे हैं, समझ में आया आपको। हमारा हृदय सीधा था पहले, बाद में हमने ये टेढ़े भगवान को अपना बना लिया और हृदय में बसा लिया, तो ये टेढ़े हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए हमारा हृदय भी टेढ़ा हो गया और अभी छोड़ के चले गए हमको, अभी हमको उनको हृदय से उखाड़ के बाहर फेंकना है, नहीं चाहिए हमको, लेकिन अभी हृदय टेढ़ा हो गया ऐसे निकल नहीं रहे वो, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं इस योग के द्वारा कि उनको निकाला जाए। अभी ऐसा योग तो उद्धव जी ने सीखा नहीं था उनकी पाठशाला में, ये तो उल्टा ही योग है, विपरीत योग, हम लोग बसाने के लिए योग करते हैं, वो तो निकालने के लिए कर रहे हैं, इसका तो गति भी नहीं थी उनको, पता भी नहीं था, आते ही क्लीन बोल्ड हो गए, जो सोच सोच के आए थे आप देखेंगे, बोले कि आप सोच रहे हैं कि उनको वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा तो आप वो दवाई लेके जा रहे हैं, पता चला एपिलेप्सी है उसको तो ये आपका दवा भी रेडी नहीं आपके पास, ऐसे कुछ हो गया उनका। और एनीवे लंबी बहुत कहानी है, उसको चार पांच घंटे उसका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन संक्षेप में उद्धव जी का दिमाग फेल हो गया पूरा पूरा, उनका ज्ञान वान जो सोच के आए थे दुमका में सब फेल हो गया, इतना फेल हो गया कि आखिर में उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पाए। नंद बाबा को मिलने गए तो अश्रु की नदियां बह रही है, गोपियां पागलों की तरह व्यवहार कर रही है, ऐसा प्रेम देखकर वो कह रहा था अरे मैं तो इतना पास में हूँ कृष्ण के, हर दिन उठता बैठता हूँ लेकिन मुझमें इतना प्रेम नहीं है, जो इतनी दूर रहती है उनसे और इतना निकट रहती है आत्मा के स्तर पर, इतना प्रेम है इनका कि उसको ना कोई बता नहीं रहा है, वो समझ रहे हैं खुद देखकर, देखकर समझ रहे हैं, जैसे डिस्कशन बस एक्सप्रेशन है, खाली अनुभव हो रहा है लहरों से, ये अंडरस्टूड कि मेरा प्रेम कुछ भी नहीं है। तो ना वो ऐसे इधर थे और जब यहाँ आए ना तो नीचे 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 ऐसे 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 पूरे नतमस्तक हो गए पूरे, विद्यार्थियों को शिक्षक बन के शिक्षा देने के लिए आए थे लेकिन विद्यार्थियों के नीचे चले गए वो एकदम, तो इनके सामने खड़े रहने की भी योग्यता नहीं है, इतनी इनका इनकी प्रेम की पराकाष्ठा है। फिर पता है क्या हो गया, फिर वो एक जगह उनको नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आपको ना हमको मिलना है तो एकांत में मिलना पड़ेगा, हमारी भावनाएं हम पब्लिक में व्यक्त नहीं कर सकते। तो उद्धव जी को लेकर गोपियां ना जंगल में चली गई, उधर नंदगांव में एक जंगल है पूरा, उधर चली गई और जंगल में पत्थर पे उनको बिठाया और बैठकर अपना दिल की बात सुनाने लगे। तो जब दिल की बात सुनने लगे ना तो कुछ रो रही है, कुछ हंस रही है, कुछ डांस कर रही है, कुछ जमीन पर लोटपोट हो रही है, ऐसे अद्भुत व्यवहार कर रही है जो इसके समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये सब, ऐसा प्रेम मैंने कभी देखा नहीं आज तक। तो वो खाली बोलती रही बोलती रही बोलती रही, तो उन्होंने देखा कि इनको दुख की सांत्वना देनी है तो वो अगर बोलती रही नहीं कृष्ण के बारे में तो वो रीत जाती है अपने आप ही, कृष्ण के अनुभव करती है कृष्ण की कथा बोलते हुए, तो ये सांत्वना है उनकी। तो इसने मुंह बंद कर दिया अपना और उनको ही बोलने दिया, उसके बाद गोपियों ने उनको 6 महीने तक ब्रज में घुमाया। 2 दिन के लिए आए थे वो लेटर देने के लिए। जो कृष्ण सोच रहे कहाँ गए इधर, ये 6 महीने उनको रिझाने के लिए उनके साथ घूम रहे हैं और करोड़ों गोपियां जा रही हैं और बता रही है यहाँ पर ऐसे हुआ, यहाँ पर ऐसे हुआ, यहाँ पर बालों का श्रृंगार किया, यहाँ पर हमको पकड़ा, यहाँ पर डंडे का आवाज किया, ऐसे सारी कथाएं सुनाने लगी। अब समझो एक कुछ कथा यहाँ पर घटना होती है तो आपके हरे की दृष्टि अलग होती है। मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, आप वहां से देख रहे हैं तो आपको कुछ यहाँ का भी दिख रहा है, मुझे आपके पीछे का भी दिख रहा है, तो आपका एंगल डिफरेंट है, मेरा एंगल डिफरेंट है। तो एक ही कथा सारी गोपियां अपने अपने एंगल से बता रही हैं, एक ही कथा हर जगह पर, और वो खाली इसका सुन रहे, इसका सुन रहे, उसका सुन रहे, इसका सुन रहे, सब जगह सुन रहे। ऐसे 6 महीने यहां पर रहे उद्धव जी और 6 महीने के एंड में उनका ये कंक्लूजन निकला कि इन गोपियों का जो प्रेम है सुग्रीव समझने के परे है, लेकिन इसका अगर कुछ भी एक अंश प्राप्त करना है तो मुझे इनके चरणों की धूल लेनी पड़ेगी मेरे सर पे, और वैसे मांगूंगा तो मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, कृष्ण का मंत्री हूँ, द्वारका से आया हूँ, मतलब मथुरा से आया हूँ, तो मेरा इतना बड़ा पोजीशन है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे सहजता से धूल नहीं देंगे। बोले आप इतने बड़े हो कैसे ये मुमकिन है, तो मैं वो उनको संकोच भी देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि बड़ी सहजता से उनके चरणों की धूल मेरे सर पर प्राप्त हो जाए। और मैंने 6 महीने में देखा है कि जब गोपियां चलती रही तो घास के पत्तों पर चलने में उनको कोई संकोच नहीं रहा, एकदम आराम से चल रही थी मैं देखा। तो मैं अगर घास का पत्ता बन जाऊं तो सहजता से मेरे ऊपर चलेगी वो और उनकी रज मुझे अनायास मिलती रहेगी। देखो क्या कॉन्शियसनेस है, ऐसा ऑर्डर नहीं किया, गोपियों मैं कृष्ण का बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ, आप सब लोग चरणों की धूल दे दो मुझे आप। This is arrogance. He thought. उनको लगा ऐसे, तो उन्होंने वो भी नहीं किया, उनके अधिकार में था, अगर वो बोलते तो उनको मिल जाता था शॉर्टकट में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दिल से इनकी रज में चाहता हूँ, बिना संकोच कृष्ण के पास गए, यहाँ का रिपोर्ट दिया उनको और कहा कि मैं जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहे हूँ, वापस ब्रज में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ। क्यों तपस्या करने की जरूरत क्या, अभी क्या हासिल करना है तुम्हें। वो कहते हैं कि गोपियों के चरणों की रज हासिल करना है। अरे हम लोग तपस्या करते ना तो नीचे से ऊपर जाने के लिए करते हैं। ये सब नो 12th में आपने टीवी नहीं देखा, समुद्र किनारे घूमने नहीं गए, वड़ा पाव नहीं खाया, समुद्र का पानी पूरी नहीं खाई, और किधर भी दोस्तों के साथ टाइम पास नहीं किया, और मोबाइल भी माँ को दिया था। क्यों वो तपस्या आपने क्यों स्वीकार किया। 12th के बाद में एडमिशन मिलेगा तो MBBS होगा, मतलब आगे बढ़ेंगे आप। यहां से यहां जाने के लिए आपने कुछ त्याग किया। तो आमतौर पर दुनिया में निचले स्तर से ऊपर जाने के लिए कुछ त्याग किया जाता है, लेकिन ये तो सबसे ऊपर स्थान में बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। क्या किस लिए, तृण का पत्ता बनने के लिए। यही समझना है ब्रज में आकर, यहां पर सब कुछ उल्टा होता है, विपरीत। प्रेम की परिभाषा ना, यहां पर प्रेम की परिभाषा में गतियां विपरीत हो जाती है। तो भगवान ने उद्धव जी को चुनकर यहाँ क्यों भेजा, भगवान ने बृहस्पति की पाठशाला से उनको गोपियों की पाठशाला में भेजा PhD करने के लिए, ये समझने के लिए कि यहाँ का प्रेम का रहस्य जो है ना वो बृहस्पति की पाठशाला में नहीं मिलेगा आपको, मेरे साथ रहकर भी नहीं मिलेगा, भोजन करके मेरे साथ शिकार करके मंत्रणा करके फ्रेंडशिप करके भी नहीं मिलेगा, आपको उनके चरणों में जाना होगा। चाहते तो कृष्ण उनको दायित्व भी दे सकते थे ये ज्ञान, लेकिन वो सारा रहस्यमय ज्ञान अपने भक्तों के माध्यम से ही दूसरों को देते हैं, खुद नहीं देते हैं। हर चीज तद्विधि प्रणिपते न परिपक्षने सेवा, संतों के पास सारी चाबी जो है ना देखे रखी है साक्षात्कारों की और रहस्यों की, वो संत ही देते हैं, और संत के पास जाकर आपको झुकना पड़ेगा, तभी वो आपको रहस्य की चाबी खोलकर रहस्य बता देंगे। तो भगवान का उद्देश्य सफल हो गया कि दरवाजे खोल दिए, उसके दिल के दरवाजे खोल दिए, इसके परे भी कुछ है, दिखा दिया खोल के दरवाजे, देखो अभी आप नजारा देखो ब्रज में जाकर। और वो नजारा देखने के बाद में उद्धव जी ऐसे इतने तृण के पत्ते जैसे नम्र हो गए और तृण के पत्ता बने, और आप जहां बैठे हो यहीं पास में एक अलग प्रकार का घास आता है, उसका नाम है गुल्मलता, वो गुल्मलता के रूप में आज भी विराजमान है, और हर समय उन गोपियों का चिंतन करते हैं, गोपियों के चरणों की धूल प्राप्त करके उस प्रेम के रहस्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बेस्ट, मैं ना सच में कहता हूँ, मेरे ऐसी दिव्य दिल की तमन्ना है कि मैं उद्धव जी को मिलूं कभी और उनके चरणों में गिर जाऊं, कि जो भाव उन्होंने यहां पर प्रकट किया है ना, अनबिलीवेबल, टोटली अनबिलीवेबल। ऐसा भाव ना, देखो बड़े आदमी को ना छोटा बनना बहुत मुश्किल होता है। वो दो ही आदमी ने किया, ब्रह्मा जी ने किया है, उधर तपस्या करके पत्थर बने हैं, तो यहाँ पर इतने ऊंचे स्थान वाले उद्धव जी घास का पत्ता बने हैं। नोबडी कैन डू इट, सबको ऊपर चढ़ना है, नीचे नहीं उतरना है किसी को। और ये भूमि में उद्धव जी ने इसका रहस्य सही तरीके से समझा, इसलिए वो तपस्या करके सबसे न्यून बन गए यहाँ पर। तो वो उद्धव जी जब भगवान जा रहे थे ना यहाँ से अपना लीला समाप्त करके, आप लोग सब लोग उत्साह में हो ना कि अभी कथा समाप्त करूं? हाँ, थोड़ा हमको भी जरा एनर्जी दो आप थोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो उतने चतुर थे, वो जान लिया उन्होंने कि भगवान अभी समाप्त करके जाने वाले हैं, पहचान लिया उन्होंने सबने, सब एक दो तीन जोड़ के देखा, समझ गया कि अभी भगवान ना जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। फिर से बताऊंगा मैं कैसे उन्होंने तय किया। तो भगवान के पास आए, बोले भगवान मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर, आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, आई वॉन्ट टू कम विथ यू, कहीं भी ले जाओ, नरक में ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ, जहां आप जाओगे अवतार लेने के लिए वहां आऊंगा मैं आपके साथ, आई कैन नॉट स्टे विदाउट यू। मैंने कहा नहीं, आपको ये रहना है, आपके लिए सेवा है। तो उद्धव जी ने अपनी तीव्र इच्छा को बाजू में रख के क्या सेवा है उसको स्वीकार किया। इमेजिन, ये इतना जोश से आए थे ना बताने के लिए, आई वॉन्ट टू कम विथ यू, आई वॉन्ट टू कम विथ यू, नहीं नहीं आपको रहना है यहाँ पर, थोड़ा एक्सेप्ट किया। तो क्या सेवा थी उनको, मेरी रानियां मैं जाने के पश्चात व्याकुल हो जाएंगी और रोते रोते वो बहुत परेशान हो जाएंगी, तो मैंने बद्रीनाथ को परीक्षित महाराज को बता के रखा है कि उनको वृंदावन लेके जाना, वहां पर सांत्वना होगी उनकी, उस समय वो आपके पास आएंगी, आप उनको मेरी कथाएं सुनाना और उनके दिल को शांत कर देना और उनके मुक्ति का द्वार खोल देना। तो उद्धव जी सोचे कि इतनी बड़ी सेवा ही है, उनके साथ रहने वाले आनंद से सेवा करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो रानियां आई, उनकी भी एक लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो वो वृंदावन में आई है, जमुना जी को देखा है, जमुना जी वो बाबा जी महाराज बोल रहे थे ना, कृष्ण आत्मा राधा रानी कृष्ण आत्मा, आप तो शायद सेकंड बैच में आए। उन्होंने कहा कि वो जमुना जी को पूछते, अरे आप तो हमारे सौतन है, हमारे में से एक है, और आप कैसी खुशी से लहरा रही है। तो कहते हैं यहाँ पर हम ब्रजवासिनी है, राधा रानी का अंश है, और हमारी आत्मा राधा रानी की आत्मा कृष्ण की आत्मा सब एक रूप है यहाँ पर, और आगे आपको समझना है तो कुसुम सरोवर जाइए, उद्धव जी आपको बताएंगे सब रहस्य की बातें। तो रानियां रोते रोते बिलखती हुई यहाँ पर आई है, और रानियों ने मिलकर यहाँ पर संकीर्तन किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन, देखो कृष्ण की खास प्रेमी पत्नियों ने प्रेम से जो संकीर्तन किया वो कैसा होगा, कैसा अद्भुत होगा। हमारे जैसा नहीं है, ऐसे उत्साह है नहीं है, ध्यान इधर उधर है, इतना प्रेम से किया कि वो गुलमलता के स्वरूप से ना उद्धव जी प्रकट हो गए। सुन रहे सब लोग, रानियों के संकीर्तन के प्रभाव से जो गुलमलता के रूप में थे उद्धव जी, वो प्रत्यक्ष मनुष्य रूप में प्रकट हो गए, और इसी कुसुम सरोवर के किनारे उन्होंने भगवान की रानियों को भागवत सुनाया है, और कोई जल्दी टाइम बाउंड नहीं था उसमें, परीक्षित महाराज को 7 दिन में सुनाना था, इनके पास कोई ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं था, 30 दिन तक पूरा भागवत सुनाया उद्धव जी ने। पर भागवत आरंभ करते ही उनका दुख थोड़ा समाप्त हो गया, आनंदी हो गए वो। इसका प्रूफ क्या है कि भागवत स्वयं कृष्ण है ध्वनि रूप में, भागवत के श्लोकों का श्रवण शुरुआत करते ही कृष्ण के सानिध्य का, उपस्थिति का, संग का अनुभव किया उन्होंने, तो दुख जो था तो नहीं है इसलिए था ना, तो संग मिल गया तो दुख दूर हो गया, तो भागवत का प्रथम उच्चारण करने से ही उनका दुख निवारण हो गया। फिर उन्होंने अपना कथा भी सुना उसमें, कैसे उनका विवाह कृष्ण के साथ हुआ, और उसको सुनते सुनते उसका दर्शन भी किया, जैसे कि उद्धव जी बोल रहे हैं और स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है उनका। भागवत कैसे सुनना चाहिए, कथा का रूप तो है लेकिन साक्षात हृदय में उसका अनुभव होना चाहिए कि ऐसे हो रहा है हमारे आंखों के सामने। तो रानियां बैठकर कथा सुन रही है उद्धव जी के श्रीमुख से, और उसके प्रभाव से, उनकी पवित्रता के प्रभाव से उनको साक्षात दर्शन हो रहा है और उनकी कथाएं देख रहे हैं। उसके बाद में जब 12 स्कंद समाप्त हो गए तो अपना जो स्वरूप पर दर्शन किया था उसमें वो विलीन हो गए और गौलोक धाम चले गए। तो यहीं से कृष्ण की 16,108 पत्नियों का गौलोक गमन हो गया है उद्धव जी की कृपा से। अगर भगवान चाहते तो अपने पत्नियों को खुद ले जाते, लेकिन वो अपने भक्तों की महिमा भी दिखाना चाहते हैं कि भक्त मेरे कितने पावरफुल हैं। तो अपनी पत्नियों को यहाँ तक ब्रज की यात्रा कराई उन्होंने, जमुना जी का दर्शन कराया, यहाँ तक लेके आए, यहाँ पर 29 दिन तक निवास किया, उद्धव जी के श्री मुख से भागवत वाणी सुनी और अपने स्वरूप को प्राप्त करके वो गौलोक धाम चले गए। कितनी जगह पवित्र सुनो, कितनी कथा मैंने बताई एक जगह की, सब पूरा खचाखच खजाना भरा हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर उद्धव जी का ना इसी के पीछे गोवर्धन का परिक्रमा ना, ऐसे गोल परिक्रमा, देखो गोवर्धन के बीच में ना, तो हम लोग ऐसे परिक्रमा करते हैं उसकी। लेकिन एक जगह पर वो कुसुम सरोवर है, उसके बिल्कुल पीछे उस रास्ते से आपको उद्धव कुंड मिलेगा, जहाँ पर उद्धव जी ने तपस्या की है और गुलमलता का स्वरूप प्राप्त किया है। तो ये जुड़ा हुआ है, आप यहाँ से वहां जा सकते हैं, उसको घाटी कहते हैं, वेयर यू कैन गो अक्रॉस गोवर्धन। तो यहाँ पर उद्धव जी का विग्रह है, बैठक है उनकी, उद्धव बिहार जी का दर्शन है और अष्टावक्र मुनि की समाधि है। और एक अद्भुत चीज यहाँ पर है, वो है बलदेव जी का मंदिर भी यहाँ पर है। तो बलदेव जी भगवान जो है वो यहाँ तक ही आते हैं, इसके आगे जाते नहीं है। कारण क्या था? क्योंकि इसके आगे राधा कुंड का घेरा है, राधा कुंड यानी राधा और कृष्ण की प्राइवेट लीला स्थली है। अब बलराम जी भी जाते नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि बड़े भाई है ना, वो जाएंगे तो लीला बंद। हमारे बचपन में कैसे हम लोग ना पर्दा लगाकर बाथरूम में स्नान करते, जोर से गाते थे और पता चला कि पिताजी आ गए, एकदम गाना रिकॉर्ड बंद बीच में, ऐसा हम लोग पापा के बंद। तो ऐसे अगर कृष्ण भगवान की लीला में प्राइवेट में बलराम जी आ गए तो नहीं, दाऊ जी आ गए, बंद बंद बंद, नो मोर लीला, है ना, संकोच है ना, बड़े भाई है वो, उनके रहने कैसे कर सकते। तो लेकिन बड़े भाई को सम्मान है अपने छोटे भाई के ऊपर मन में, और वो उनकी लीला में बाधा नहीं डालना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं और अपने जाने से बंद भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आकर वो बैठते हैं और यहाँ से दूर से राधा कुंड में क्या चल रहा है उसका दर्शन करते रहते हैं। ये भाव है उनका, उद्धव जी का, बलराम जी का। तो बलराम जी का भी यहाँ मंदिर है, ये उनका बॉर्डर है, यहाँ से आगे नहीं जाते, वहां से भी, यहाँ से ये पूरा राधा कुंड घिरा है। यहाँ पर राधा कृष्ण की बहुत ही उत्कट, अति उत्कट लीलाएं यहाँ पर चलती रहती है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पर बोलना नहीं कुछ, शांति से जाना है और आस्वादन करना है और ग्रहण करना है, बस कृपा को ग्रहण करना है, अपने एंटीना को रखना है एकाग्रता में। ऐसे अनंत कहानियां हैं, लेकिन कुसुम सरोवर का जो महिमा है वो बहुत ही अद्भुत है। आप सब लोगों का भाग्य आप कुसुम सरोवर आए, भगवान को धन्यवाद कीजिए कैसे पवित्र स्थली पर हम लोग आए, भगवान का लीलाओं का श्रवण किया, मौका मिला यहाँ बैठने का, प्रसाद पाने का, कुसुम सरोवर के सान्निध्य का भाग्य मिला, यमुना जी का यहाँ दर्शन हुआ कुसुम सरोवर के जल के रूप में, इतना सुंदर दृश्य अदृश्य स्थानों का वर्णन सुना, राधा रानी की कृपा नारद मुनि कैसी हुई वो सुना। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि ऐसे कितने लोग दुनिया में रहते हैं, 650 करोड़, कितने लोग आते हैं यहाँ पर, कितने लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पर का रहस्य क्या है। हम लोग बहुत गिने चुने भाग्यवान लोग हैं। तो बार बार धन्यवाद करो राधा रानी को और कृष्ण भगवान को। जय जय श्री राधे श्याम।